हरे कृष्णा। तो आज हम होली के विषय में विस्तार में चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में, भारतवर्ष में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में सब जगह पर होली का उत्सव मनाया जाता है। इसका उगम श्री वृंदावन धाम में जो जगह है बरसाना नाम की, वहां पर हुआ है, जो राधा रानी का निज धाम है। राधा रानी उस दिव्य धाम में भानु महल नाम के जगह पर निवास करती हैं, जो भानुगढ़ पर है। ब्रह्मा जी के वहाँ पर चार शिखर हैं, ब्रह्मा जी वहाँ पर पर्वत बन के विराजमान हैं। उस भानुगढ़ पे राधा रानी भानु महल पे निवास करती हैं अपने माता पिता के घर, और उनके धाम से ये होली का उत्सव आरंभ हुआ है। होली का उगम बरसाने में है। और विशेष बात यह है कि वृंदावन धाम में जो होली मनाई जाती है वो 40 दिन की होती है। मुंबई जैसे शहरों में हम फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन करने के बाद वाले दिन रंग होली मनाते हैं, लेकिन ब्रज में ये वसंत पंचमी के दिन आरंभ होता है। वसंत पंचमी के दिन उत्थापन आरती में शाम को पहली बार गुलाल उड़ता है ठाकुर जी के अंग पर, श्री अंगों पर, और फिर सभी लोगों पर इस गुलाल को उड़ाया जाता है, और हर रोज शाम को होली खेली जाती है। 40 दिन की होली का उत्सव इतना अद्भुत होता है कि आप किसी भी मंदिर में, श्री वृंदावन धाम में वसंत पंचमी के बाद जाएंगे तो आपको हर जगह पर अलग अलग रंगों के सुंदर सुंदर रंग आपके ऊपर आएंगे भगवान के प्रसाद के रूप में। और ये समझने वाली बात है कि हमारे यहाँ पर बम्बई में शहरों में जो रंग फेंकते हैं उसमें कई प्रकार के केमिकल होते हैं, कई प्रकार के दूषित या घातक पदार्थ होते हैं, लेकिन ब्रज में जो होली होती है वो एक विशिष्ट प्रकार के पौधे के पत्तों से उसका रंग बनाया जाता है। वो पत्ते किराना के दुकान में मिलते हैं और वो पत्तों को लाकर वो उबालते हैं, और वो जो रंग निकलता है उसमें से, उसमें गुनगुने टेम्परेचर तापमान में वो पिचकारी में भरते हैं, और गुनगुने अवस्था में जब हमारे ऊपर उसको डाला जाता है तो हमारी त्वचा जो है वो खिल जाती है, त्वचा में तेज आता है, त्वचा के रंध्र खुल जाते हैं, त्वचा के जो दोषयुक्त द्रव्य हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो होली के रंग जो होते हैं वो हमारे आरोग्य के लिए भी बहुत ही वर्धक होते हैं, आरोग्य के हित में होते हैं। हमारे चर्म को, हमारी त्वचा को नष्ट करने के लिए, जलाने के लिए या दूषित करने के लिए नहीं होते। तो मूल रूप से ये होली के रंग जो है वो प्राकृतिक होते हैं, चाहे वो पीला हो या हरा हो या नीला हो या सातों रंग का रंग हो, वो प्राकृतिक रूप में जो होता है जब उसको हम गर्म गुनगुनी पानी में मिलाते हैं, उस पत्तों का गुनगुना किया हुआ द्रव्य मिलाते हैं, तो वो कौन से भी रंग का अगर द्रव्य होगा जब हमारे शरीर पर आएगा तो जहां पर भी उसका स्पर्श होगा वहां पर आनंद का और सुख का अनुभव होगा, और आरोग्य पर, त्वचा के इसमें बहुत ही सकारात्मक परिणाम होगा। तो इस प्रकार के रंगों को ब्रज में उपयोग किया जाता है। एक होती है सुखी होली, जिसमें गुलाल जैसे, गुलाल अबीर जैसे रंगी बिरंगी पाउडर्स जिसको हम कह सकते हैं वो लगाए जाते हैं, हाथों से मले जाते हैं, और दूसरे इन्हीं इन्हीं को गुनगुने पानी में मिलाकर पिचकारी के रूप में मारा जाता है। फिर नवमी के दिन, अष्टमी के दिन लड्डू होली होती है, जो नंदगांव से पांडे आते हैं उनको लड्डू खिलाते हैं, निमंत्रण के रूप में आते हैं। और नवमी के दिन जब हमारे ठाकुर जी बारात लेकर बरसाने आते हैं और होली का आरंभ होता है तो सभी गोपियां लट्ठ लेके आते हैं। इसका बहुत सुंदर ऐसा इतिहास है कि नंदगांव के जो आते हैं उनको होरियारे कहते हैं, और बरसाने में जो स्त्रियां हैं उनको गोपी कहते हैं, ब्रज गोपियां। तो वो लट्ठा लेके आते हैं और बरसाने के लोग लट्ठा लेकर 15 15 दिन तक उस लट्ठे को तेल लगाकर मालिश करते हैं, लट्ठे को एक प्रकार से सिद्ध कर देते हैं, सीधा भी करते हैं और उसको तेल लगाकर मजबूत भी कर देते हैं। फिर जो स्त्रियां, जो गोपियां हैं, जो लट्ठा मार होली खेलने वाले हैं, उन बहुओं को, लड़कियों को, कन्याओं को 15 15 20 20 दिन तक मेवा, दूध, दही, घी, मक्खन खिलाया जाता है बड़े प्रेम से। उनको उन दिनों में कोई मेहनत के काम देते नहीं है, केवल उनके मालिश की जाती है, उनको तेल से मालिश करके स्नान किया जाता है, कराया जाता है, उनके शरीर की पुष्टि के लिए उनको मेवा खिलाया जाता है, उनको बड़े प्रेम से व्यवहार किया जाता है, उनके लिए नए वस्त्र सिलाते हैं, बाजार में जाकर प्रेम से लेकर आते हैं, माप से सिलाते हैं, बहुत रंग बिरंगी डिजाइन वाले कपड़े सिलाते हैं खास होली के लिए नए कपड़े, और फिर हष्ट पुष्ट करके अच्छे भाव से प्रेम से उनको होली खेलने के लिए श्रृंगार करके फूलों की मालाएं लगाकर उनको भेजते हैं। फिर एक जगह पर जिसका नाम है रंगीली होली, रंगीली गली, एक विशिष्ट स्थान है बरसाने में, जहां पर सरकार की तरफ से ट्रकों से भरकर भरकर धूल डाली जाती है, और उस रास्ते पर उस मार्ग पर एक तरफ से नंदगांव के हुरियारे आते हैं ढाल लेकर सज धज कर, और एक तरफ से बरसाने की गोपियां आती हैं सज धज कर लट्ठा लेकर। और जब बरसाने के गोपियां आ रही हैं उस तरफ से नंदगांव के हुरियारे आ रहे हैं, तो छत से खिड़की से ऊपर से नीचे से साइड से इस तरफ से उस तरफ से सब जगह से बरसाने की जो गोपियां हैं उन पर रंग डालती हैं, अबीर डालती हैं, गुलाल डालती हैं, पिचकारी से मारती हैं, उनको प्रेम से गालियां भी देती हैं। कहते हैं वो गालियां जो बोलती हैं गोपियां, वो नंदगांव की हुरिया उनको बड़ी अच्छी लगती है सुनने के लिए, उसी को सुनने के लिए बरसाने को आते हैं। फिर जब उनका मिलन होता है एक जगह पर, उस समय पर ये गोपियां उनको प्रेम से लट्ठा प्रहार करना आरंभ कर देती हैं। फिर ये नंदगांव के हुरियारे कभी बैठ जाते हैं कभी उठते हैं, लेकिन सर पे ढाल पकड़ते हैं जो बलराम जी का प्रतीक है, और सारे घाव जो है उस ढाल पर झेलते हैं, और गोपियां उछल उछल कर जैसे कोई पहलवान उछलता है वैसे उछल कर उस लट्ठा से उनको जोर से प्रहार करते हैं, और सब जगह उसको झेलते हैं सब ग्वाल बाल नंदगांव के। और कुछ समय के बाद में जब वो रोकती हैं तो ये ढाल को नीचे उतारते हैं और जेब से मिठाई अलंकार और दक्षिणा देकर वो गोपी के पैर छूते हैं और गोपी उनको आशीर्वाद देती है। ऐसी वदंती है कि अगर गलती से भी उस प्रहार को झेलने में अगर वो असफल हो जाते हैं और कहीं वो लट्ठा का प्रहार वास्तविक रूप में शरीर पर होता है, उस समय जो भी जख्म होती है या जो भी कष्ट होता है, जो पीड़ा होती है, सूजन आती है, तो उसी जगह की जो रज है उसको उठाकर वहां लगा देते हैं और वो जख्म ठीक हो जाता है। ये इस लट्ठा मार होली के पीछे भाव है। और कई हजारों गोपियां आती हैं और कई हजारों नंदगांव के होरियारे आते हैं, बड़े बूढ़े बालक सब आते हैं, और सब पे ऊपर ऐसे ही प्रेम से जोर से उछल उछल कर प्रहार किया जाता है, उसको झेलते रहते हैं, रंगों से भर देते हैं दोनों एक दूसरे को। और उसके बाद में जब ये होली का लट्ठा मार होली जिसको कहते हैं वो उत्सव समाप्त होता है, उस समय सब जितनी भी रज वहां गिरी हुई है, सब जितने भी देखने को लोग आते हैं, लाखों हजारों करोड़ों लोग आते हैं, जगह नहीं होती है, कहां बैठे, छत सारे सारी खिड़कियां सारे बरामदे सब फुल हो जाते हैं, वो सब लोग उतरते हैं और वो सारी रज जो है वो प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। जब एक घंटा बाद आप वहां पहुंचेंगे तो आपको सारी रज गायब मिलेगी, उल्टे रास्ते में गड्ढे मिलेंगे, जो गड्ढे खोद खोद कर वो रज लेके जाते हैं। भाव यह है कि जिस रास्ते पर जिस मार्ग पर इतने प्रेम से नंदगांव के हुरियारे और बरसाने की गोपिकाएं ब्रजांगनाएं मिलकर होली खेलते हैं लट्ठामार होली, वो भाव इतना उच्च है कि बड़े बूढ़े और वृद्ध और बीमार होने पर भी बरसाने की गोपियां इसमें जाती हैं, ये राधा रानी का प्रतिनिधि के रूप में जाती है, और सब ग्वाल बाल नंदगांव से कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं और बलराम जी के रूप में उसको अपने उन वारों को उन हमलों को उन प्रहारों को अपने पर झेलते हैं, बलराम जी उनको बचाते हैं उस प्रहारों से। और वही भाव हारने के लिए आते हैं, मार खाने के लिए आते हैं, और फिर जब हार जाते हैं तो चरणों में गिर जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनको फाग जो है ना वो देते हैं, उसमें अंगूठियां होती हैं, अलंकार होते हैं, सब चीजें होती हैं। ये बरसाने का जो उत्सव है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है, इसके लिए देश विदेश के लोग देखने आते हैं, इसकी वीडियो शूटिंग करते हैं, इसके बारे में इंटरव्यू लेते हैं, उनके बारे में भाव को पूछते हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्यों ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सबसे अधिक हमें भाता है वो भाव ये है कि 15 दिन तक बरसाने की घर की बड़ी बूढ़ी औरतें अपनी जवान कन्याओं को और बहुओं को मेवा खिलाकर हष्ट पुष्ट कर देते हैं, बोले जाओ बेटा जाओ लट्ठा मार खोली खेल कर आओ। इसी के अगले दिन जब दशमी आती है, फागुन के शुद्ध पक्ष की दशमी, इस दिन बरसाने के जो ग्वाल बाल हैं पुरुष, वो वैसे ही सज धज कर होली के नायक बनकर श्रृंगार करके फूलों का रंगों का फेटों का रंग बिरंगे कपड़ों का और लट्ठा लेके ढाल लेके नंदगांव जाते हैं। और उस दिन नंदगांव की जो गोपियां हैं, जो जवान कन्याएं बहुएं हैं, छोटी सी हैं, बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, बीच उम्र की हैं, सभी उम्र की जितनी भी गोपियां हैं, छोटी है, मोटी है, पतली है, सब गोपियां सज धज कर बाहर आती हैं। और जैसे ही बरसाने से पुरुष वर्ग वहां पहुंचते हैं, उन पर लट्ठा प्रहार करते हैं, उसको नंदगांव की होली कहते हैं। वही होता है उल्टी प्रकार से, वहां की औरतें और यहाँ के पुरुष, बरसाने के पुरुष और नंदगांव की औरतें, ये उत्सव वहां की गली में होता है। और वहां की गली में भी कई घंटों तक ये लट्ठा प्रहार चलते रहता है बड़े आनंद से। उसके बाद में बरसाने के पुरुष उनके चरणों में गिरते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनको फागुन का जो उपहार है वो देते हैं, उनके घर में रोटी खाते हैं, उनके घर में मिठाई खाते हैं, नंद बाबा का दर्शन करते हैं, कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं और सबके गले मिलकर आनंद मनाकर फिर चले जाते हैं। उसके बाद में आती है एकादशी, फाल्गुन शुद्ध पक्ष की एकादशी, उसका नाम क्या है, रंग भरनी एकादशी। ये रंग भरनी एकादशी में श्री वृंदावन धाम में ठाकुर जी होली खेलते हैं। वृंदावन धाम में कई ठाकुर हैं, बांकी बिहारी जी है, राधा वल्लभ लाल है, राधा मदन मोहन जी है, राधा गोविंद जी है, राधा गोपीनाथ जी हैं, राधा रमण देव हैं, राधा दामोदर हैं, राधा श्याम सुंदर हैं, कई कई ठाकुरों के कई मंदिर हैं। और वृंदावन धाम में एकादशी के दिन सब ठाकुर होली खेलते हैं, सब वृंदावन धाम के जितने भी स्त्री पुरुष जब हैं वो सब दर्शन करने के लिए आते हैं, थाली में रंग भरकर, अलग अलग प्रकार के रंग भरकर लेके आते हैं और ठाकुर के ऊपर उड़ा देते हैं। फिर ठाकुर की तरफ से जो गोसाई ठाकुर जी की सेवा में है वो ठाकुर जी की तरफ सभी लोगों पर रंग उड़ाते हैं और सब मंदिरों में पिचकारी और सूखे रंग और गीले रंग और वो पत्तों से बनाया हुआ गुनगुना पानी, सबको पिचकारी से ऊपर से नीचे से बाजू से सब जगह पर रंग खेला जाता है। उसी दिन वृंदावन के लोग जमुना किनारे से चलते हुए वृंदावन की परिक्रमा भी लगाते हैं। और हमारा ये अनुभव रहा है कि वास्तविक रूप में जहां भी आप जाएंगे इन दिनों में एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। आदमी कितना भी दुखी रहेगा लेकिन इस दिन वो सब दुख को भूलकर केवल ठाकुर के आनंद में, ठाकुर की स्मृति में ये दिव्य उत्सव को मनाता है। इसलिए पूरे ब्रज में आप कहीं भी जाएंगे, आप पर रंग फेंका भी जाएगा, आप किसी पर फेंकेंगे, कोई किसी का बुरा नहीं मानता है। क्या कहते हैं, बुरा ना मानो होली है। बड़े प्रेम से लोगों को पूछकर, कभी ना पूछकर, लेकिन कष्ट देते नहीं है, बड़े प्रेम से होली खेलते हैं। तो ये एकादशी का उत्सव रंग भरने एकादशी है। सब जगह छुट्टी होती है, सब लोग मिलकर नए नए वस्त्र पहनकर आते हैं और सब जगह पर रंग डालते हैं बड़े प्रेम से, और प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं और धाम की, वृंदावन धाम की जमुना किनारे परिक्रमा करते हैं। इसके बाद द्वादशी है, त्रयोदशी है, फिर चतुर्दशी है और फिर होलिका दहन है, फिर धुलेटी है। इस बीच में एक छड़ीमार होली होती है जो गोकुल की होली होती है। इसमें बलराम जी का जो गोपियों का समूह है वो अलग है, कृष्ण की गोपियां अलग हैं जो उनके साथ में नृत्य करते हैं, रास नृत्य करते हैं और लीलाएं करते हैं, होली लीला करते हैं। वैसे बलराम जी का भी गोपियों का समूह है, अलग समूह है वो, जो केवल बलराम के साथ में ही होली खेलते हैं। और वो जब बलराम जी के ऊपर गोपियों ने लट्ठा मार करने का आरंभ किया था तो बलराम जी ने हल उठाकर उन गोपियों के प्रहारों को झेला था। तो आज उस हल के प्रतिनिधि के रूप में लोग जो है छड़ी लेकर आते हैं और वो गोपियां प्रहार करती हैं और पुरुष जो वर्ग होते हैं ग्वाल बाल वो छड़ी को पकड़कर उस वारों को झेल लेते हैं। और बरसाने नंदगांव की होली में वो ढाल पकड़कर उस लट्ठा के प्रहार को झेल लेते हैं। तो ये होली को हुरंगा कहते हैं, जो बल दाऊ जी के यहाँ पर होता है। वो सबसे आखिरी दिन जो होली का होता है वो दाऊ जी, जो ब्रज के दक्षिण भाग में सबसे आखिरी जो स्थान है वो बल दाऊ जी का स्थान है, उसको बलदेव भी कहते हैं और दाऊ जी भी कहते हैं। वहां पर बलदेव की 6 फुट 6 इंच की बड़ी सुंदर मूर्ति है, रेवती जी की मूर्ति है। वहां पर ये बहुत ही विश्व प्रख्यात बलदेव जी का, दाऊ जी का हुरंगा उत्सव मनाया जाता है। इसके बीच में बठैन में होली होती है। बठैन में एक है छोटी बठैन नाम की जगह, एक है बड़ी बठैन नाम की जगह। वहां पर हमारे ठाकुर जी कृष्ण बलराम जी गौचरण करने के लिए जाते थे और बठैन नाम क्यों दिया है क्योंकि वहां पर बैठकर जो ग्वाल बाल गौचारण करते थे, बीच में बैठकर भोजन करने का विश्राम किया करते थे। जहां पर कृष्ण भगवान बैठे हुए थे विश्राम करने के लिए उसका नाम है छोटी बठेन, जहां पर बलराव जी विश्राम करने बैठे नाम है बड़ी बठेन। तो इन दोनों जगह पर होली का उत्सव होता है, बहुत सुंदर उत्सव होता है। और फिर आखिर में ये बलदाव जी का होरंगा होता है और फिर होलिका दहन भी होता है। ब्रज में चतुर्दशी के दिन जब होलिका दहन होता है तो एक गांव है फालेन, और फालेन गांव की महिमा ऐसी है कि वहां पर प्रहलाद के वंशजों का निवास है और वो बहुत ही पवित्र जीवनचर्या, तपस्वी जीवनचर्या चलाने वाले ब्राह्मण हैं। उसमें से एक व्यक्ति कुछ 15 दिन के लिए तप करता है, उपवास करता है, व्रत रखता है, भगवान का नाम दिन रात लेता है, उसको कहते हैं फालेन का पांडा, जिसको उस दिन के लिए लीला के लिए नियुक्त करते हैं उस गांव की ओर से, और बहुत ही विशाल होलिका दहन वहां पर आयोजित किया जाता है। पूरा ब्रज का समाज जो है वहां आता है उस होलिका दहन के उत्सव देखने के लिए। और एक समय पर जब ये होलिका जलती है और पूरी ज्वालाएं उसके आकाश तक पहुंचने का प्रयास करती है, पूरी तरह से जोरों से जलती है, उस समय ये फालेन का पांडा जो है वो शरीर को तेल लगाकर भगवान का नाम लेते हुए उपवास रखा है कई दिनों से, वो सीधे होलिका के अग्नि में प्रवेश करता है और सीधा होली के बीच में चल के दूसरी ओर से बाहर निकलता है, और उसके शरीर के ऊपर अग्नि की ज्वालाओं का एक भी कण भी, कण मात्र भी परिणाम आंच या नुकसान नहीं होता है। सब लोग इस दिव्य चमत्कार को हर साल देखते हैं। उस पंडा के जीवन की एक विशेषता है कि वो पवित्र जीवन जीता है, साल भर में उसके हाथ से कोई पाप नहीं होता है, कोई नियम नहीं तोड़ता है, भगवान के नाम का निरंतर जप करता है, गुरु की कृपा उस पर है, गुरु का अनुग्रह है, और सबके द्वारा सम्मति आशीर्वाद और नियुक्त किए जाने पर वो तप करके फिर होलिका में प्रवेश करता है। तो उस उत्सव का नाम है हलफालेन का पांडा, सब लोग उत्सव देखते हैं। उसके बाद के दिन फिर होती है धुलेटी, जिसको यहाँ पर हम लोग होली करके बम्बई दिल्ली शहर में मनाते हैं, जो पूर्णिमा का दिन है, जिस दिन भगवान के भक्त अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का भी आविर्भाव दिवस होता है। उस दिन उसको धूली वंदन कहते हैं। उस दिन जो जमीन की धूल है ब्रज के अंदर उसको उठा उठा कर लोगों के ऊपर फेंकते हैं, लोगों को लगाते हैं, उन पर मलते हैं। उसका अर्थ यह है कि भगवान का धाम श्री वृंदावन धाम जो है वो इतना पवित्र है कि इसकी रज जो है भगवान को बड़ी प्रिय है। इसके लिए भगवान ने उस मट्टी को भी खाया था। आप सब जानते हैं भगवान की मृद भक्षण लीला, भगवान ने जा जाकर उस रज को खाया था। आचार्य उस रहस्य को बताते हैं कि भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड छुपे हुए हैं, भगवान के रोम रोम से ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, उस प्रकार से भगवान के उदर में भी ब्रह्मांड छुपे हुए हैं। तो उदर में छुपे ब्रह्मांडों ने कहा, अरे जो रज में रण में जो आपके रोम रोम में बसे हुए हैं उनको जो दिन रात धूल का लाभ होता है हमें कब होगा। तो उन पेट पर पेट में बैठे हुए जो इतने भी ब्रह्मांड है उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने वो रज खाई और उन तक पहुंचाई, ये आचार्य एक भाव बताते हैं। और भगवान ब्रज रज को इतना प्रेम क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रज रज इसके अंदर उनकी गोपियां, उनके ग्वाल बाल, उनके गाय, उनके बैल, उनके प्रियजन वहां पर विहार करते हैं। पृथ्वी माता भी जब भगवान का जन्म होने वाला था इतनी प्रफुल्लित हो गई थी इस भाव से कि इसके आगे हमारे परम भगवान, परात्पर भगवान, अखिल ब्रह्मांड नायक गोलोकेश्वर श्री कृष्ण भगवान नंगे पैर हम पर चलेंगे, क्योंकि पूरे निर्माण में भगवान कहीं भी नंगे पैर नहीं चले। द्वारका, जगन्नाथपुरी और कहीं भगवान ने लीला किया, अयोध्या धाम, श्रीरंगेश्वर, तिरुपति, जहां पर भी है भगवान पादत्राण पहनकर चलते हैं, कहीं भी अपने कोमल मक्खन जैसे मुलायम कदम जो है वो जमीन पर रखते नहीं है। केवल ब्रज भूमि वृंदावन धाम ऐसा एक भूमि है जहां पर भगवान पादत्राण के बिना चलते हैं। उनके साक्षात कोमल लाल रंग के मृदु चरणों का जो स्पर्श है वो भूमि से होता है, वो होगा इस भाव से पृथ्वी प्रफुल्लित हो गई थी, इसलिए पृथ्वी ने रात में भी चमत्कार दिखाए थे। तो भगवान के और बलराम जी के, कृष्ण बलराम दोनों के और ग्वाल बालों के सभी के चरणों का स्पर्श इस भूमि में हुआ है। और भगवान के जितने प्रिय भक्त हैं, संतगण हैं, ऋषिगण हैं, वैष्णवगण हैं, इनके भी चरणों का स्पर्श इस भूमि पर हुआ है। इस भाव से, क्योंकि ये धूल इतनी पुनीत है, इतनी पुण्यवान है, इतनी पवित्र है, इतनी कल्याण करने वाली है, भगवान ने स्वयं उसका ग्रहण किया है, आस्वादन लिया है, उस रज को उठाकर लोग सब लोगों को लगाते हैं। क्योंकि इस रज की ऐसी महिमा है कि सारे वैकुंठों का ऐश्वर्य भी एकत्र किया जाए तो भी सारे वैकुंठों के ऐश्वर्यों को लेकर इस रज का एक भी कर्ण हम खरीद नहीं सकते हैं। क्योंकि जो वैकुंठों का ऐश्वर्य है वो एक जगह पर है, लेकिन यहाँ की जो रज का कर्ण है इसके अंदर राधा और कृष्ण के दिव्य माधुर्य प्रेम का रहस्य छुपा हुआ है। ये प्रेम का ऐश्वर्य है, ये लौकिक ऐश्वर्य नहीं है। इसलिए जो रज इतनी कीमती है, इसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव आदि देवता ऋषिगण देव ऋषि तरसते हैं, उस रज को इस दिन उठाकर लोग अपने प्रेमियों के चेहरे पर लगाते हैं, शरीर पर लगाते हैं। इसलिए उसको धूलि वंदन धुलैटी कहा गया है। और उसका विकृत स्वरूप यह है कि लोग अभी गटर का कीच उठाकर लोगों को फेंकते हैं, इस दिन पे कोई भार नहीं निकलता है। लेकिन इसका दिव्य भाव जो गहरे छुपा हुआ है वो है कि जो भूमि की रज है, जो भगवान के और भगवान के भक्तों के चरणों के स्पर्श से पुनीत हो गई है, उसको लगाने का यह मौका है। इसलिए धूलि वंदन का उत्सव मनाते हैं। तो हमारा शास्त्र जो है और हमारा जो पौराणिक इतिहास है वो वास्तव रूप में है, कोई किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने लोगों को बहकाने के लिए लिखी गई कहानी नहीं है। ये वास्तव है, ये सत्य है, ये प्रत्यक्ष लीला है। और इन हर एक प्रत्यक्ष लीला में बहुत गहरा भाव, गहरा सार छुपा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे कलयुग आगे बढ़ता है वैसे जितनी दिव्यता की भरी हुई चीजें हैं वो बीभत्स होकर, बहुत गिलौनी होकर, निचले दर्जे की होकर हमारे सामने प्रकट हो जाती है। एक तरफ दिव्य भाव है कि भगवान के चरणों को जिसने स्पर्श किया है उस रज को हम अपने ऊपर लगाते हैं, दूसरों को लगाते हैं, और दूसरा उसका विभत्स स्वरूप यह है कि गटर का कीचड़ का उठाकर लोगों की गाड़ियों पर, शरीर पर फेंकते हैं और लोगों को कष्ट देते हैं, बीमारियां भी देते हैं। इसलिए हम सब भारतीयों का ये कर्तव्य है कि हमारे हर एक इतिहास के उत्सवों का गहरा अर्थ समझें, उसको पढ़ें, उसका अध्ययन करें, उस पर चिंतन मनन करें, और फिर उसको समझकर अपने जीवन में उस भाव से उतारें और एक ऐसा उदाहरण स्थापन करें कि जब हम उस भाव से उस उत्सव को मना रहे हैं, देखने वाले उसको देखकर प्रेरित हो जाएं, चाहे वो देश के हों, शहर के हों, या विदेश से आए हो मेहमान हो, जब हमारे समझदारी से, पूरी साक्षात्कार से किए हुए इस उत्सव को मनाते हुए वो देखेंगे तो उनके मन में इस भाव का परिणाम होगा, और वो भी ऐसे शुद्ध तरह से समझ बूझ कर, साक्षात्कार प्राप्त करके उत्सव मनाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। एक भारतीय होने के नाते हम सबका एक कर्तव्य है कि हमारे इतने दिव्य उत्सव हम मनाते हैं, हर महीने आते हैं उत्सव, कोई ऐसा महीना खाली जाता नहीं इसमें उत्सव नहीं होते। हर महीने के हर उत्सव में, अनंत उत्सवों में गहरा दिव्य आध्यात्मिक सार भरा हुआ है, उसको पढ़ना, समझना, साक्षात्कार कर लेना, ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तब हमारा जीवन सार्थक होगा, और जब हम सार्थक किए इस जीवन से उदाहरण स्थापित करेंगे तो लोगों का उद्धार होगा। इसलिए हम सभी दर्शकों से यह हार्दिक विनंती करते हैं कि होली जैसे दिव्य उत्सव का सार हम समझें और उसको जीवन में उतारें और लोगों के सामने प्रस्तुत करें और अपना और लोगों का जीवन धन्य करें। हरे कृष्ण।